अर्पा रेडियो द्वारा प्रस्तुत है टॉक चीट विद अरुण सीजन वन में सुनिए देश के अलग अलग शहरों के रंगमंच कलाकारों के साथ रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों पर सामूहिक बातचीत।
अर्पा रेडियो के कार्यक्रम टॉक चीट विद अरुण सीजन वन में मैं अरुण भांगे आप सभी श्रोताओं और रंगकर्मी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ टॉक चीट में शामिल हैं डॉक्टर आनंद पांडे जशपुर छत्तीसगढ़ से।
आनंद पांडे जी अभिनेता हैं, निर्देशक हैं और उनका अपना एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है छत्तीसगढ़िया क्लाउड नाम से। आनंद जी ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से नाट्य कला में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और नाट्य कला में ही इन्होंने पीएचडी की हुई है और साथ ही साथ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में ये अतिथि व्याख्याता भी हैं और मिंटू इंटरनेशनल स्कूल में बतौर नाट्य अध्यापक ये अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी कार्यशालाओं में बतौर नाट्य प्रशिक्षक ये अपनी सेवा देते रहे। आनंद जी आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप।
दूसरे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। ओम प्रकाश जी की जन्म और शिक्षा बोकारो स्टील सिटी झारखंड में हुई। वैसे वो मूलतः वैशाली जिला बिहार के हैं। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हुए हैं और यहीं पर जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पिछले 4 सालों में काफी सारे इन्होंने शॉर्ट प्ले किए हैं, नुक्कड़ किए हैं, स्किट किए हैं, फुल लेंथ प्ले किए हैं और साथ ही साथ एनसीसी के लिए पिछले 2 सालों में कल्चरल मेंटर के रूप में इन्होंने काम भी किया है। ओम प्रकाश जी आपका भी स्वागत है। तीसरे रंगकर्मी हमारे साथ हैं कुणाल भांगे, ये मेरे भतीजे भी हैं। हाँ, भतीजे इसलिए इनको नहीं जोड़ा हूँ, ये अच्छे कलाकार हैं। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनल ईयर में हैं। इनके रंगमंच की शुरुआत बाल रंग शिविर में हुई। इन्होंने इप्टा के साथ काम किया है, अग्रज के साथ काम कर रहे हैं। इनके यूनिवर्सिटी में ही एक ग्रुप है अर्चिन्स, उसके साथ ये पिछले 3-4 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। पिछले सत्र में ये उसके कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं। इनका मंच के साथ साथ मंच के पीछे भी इनकी रुचि है। ये लाइट्स पे भी काम करते हैं, बैकग्राउंड साउंड पे भी काम करते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां ये संभालते हैं। आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है बड़ा ही जरूरी प्रश्न लगता है मुझे कि आज काफी लोग जुड़ रहे हैं, बड़ा वर्ग जो है वो युवाओं का है, इसका क्या कारण है, क्यों संख्या में वृद्धि हो रही है। दूसरा ये कि ये जुड़ रहे हैं तो रंगमंच उनके लिए कितना उपयोगी और फायदेमंद हो सकता है और ये युवा रंगमंच के लिए कितने उपयोगी और फायदेमंद हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले हम ओम प्रकाश जी से शुरू करें, वो क्या सोचते हैं इस पर।
ऐसा है कि आजकल का जो समय चल रहा है इसमें क्या हुआ है कि चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है सभी के पास एक्सेस है, अब मोबाइल में सब फिल्में देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो क्या हुआ है कि एक्टिंग और ये जो कल्चर है ये युवाओं तक पहुंचा है। पहले था क्या कि सिर्फ ये टीवी तक था, कुछ सिनेमा हॉल तक था, जो आम वर्ग है, जो छोटे मोटे जो होते हैं वहां पर अगर आप पूछें कि एक्टिंग है ये है, इसकी पढ़ाई भी होती, तो उनको इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ये हर छोटे छोटे कस्बों और हर जगह पहुंच चुका है तो लोग इस बारे में सोचते हैं कि अगर मुझे जाना हो कल को टीवी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में या इस एक्टिंग के फील्ड में तो हम कैसे जाएं। तो जब धीरे धीरे लोग जब इसके तरफ जुड़ते हैं, इसके प्रति देखते हैं, जानकारी को इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ एक थिएटर रंगमंच भी एक माध्यम है जिससे कि हम ट्रेन होकर इस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है
कि ओम जी बिल्कुल आपने जो बोला, लोग रंगमंच से सीख कर वहां जाना चाहते हैं इसलिए भी आकर्षित होते हैं। कुणाल इस पे आप आगे कुछ जोड़ेंगे?
हाँ मैं बिल्कुल ओम प्रकाश सर से मैं एकदम एग्री कर रहा हूँ कि ये तो है कि आज के डेट में जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली वेब सीरीज पे और फिल्मों पे इस तरीके से बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि एक्टर्स जो हैं, जो ट्रेन्ड एक्टर्स हैं वो लोग आ रहे हैं और खासकर अर्जुन में रह के फ्रेश जो यूथ है, जो बेसिकली कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनके साथ में लगातार उनका इंटरेक्शन मेरा रहा है। चीजें ये समझ में आ रही है कि बहुत सारे अच्छे एक्टर जो है वो उनका बैकग्राउंड जानना चाह रहे हैं और जैसे वो बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लोग थिएटर पे काम किए हुए हैं, इनकी शुरुआत किसी ट्रेनिंग थिएटर स्कूल से हुई थी, किसी एक्टिंग स्कूल में इन्होंने पढ़ाई शुरू की है, तो वो बेसिकली उनका एक ये बंदा जा रहा है हाँ हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो दो चीजें लगती हैं, एक तो वो जो जिनका प्योर इंटरेस्ट होता है वाकई में सीखना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो इस तरीके से वेब सीरीज और फिल्मों को देख के ट्रेन के चलते या ऐसी किसी चीज को पाने के लिए वो इस तरीके से जुड़ना चाह रहे हैं। तो एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एसजी की भोपाल में जब एक इंटरव्यू हो रही थी तो आलोक चौधरी जी सर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो उन्होंने बताया कि हर साल बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने ये कही कि वो क्यों आ रहे हैं और आना चाहते हैं तो स्वागत है, लेकिन उसके पहले वो कहाँ थे। तो ये सब चीजें भी हैं कि वही दो तरीके के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो प्योर थिएटर को समझने के लिए आ रहे हैं जिनका बहुत क्लियर है कि उनको करना है आगे फ्यूचर में, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ किसी वेब सीरीज पे या किसी एक अच्छे एक्टर को देख के अचानक से मूड बना के आ जा रहे हैं, ये हो सकता है।
बिल्कुल आनंद जी
जी,
आपको क्या लगता है कि वो किस लिए जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज का जो युवा है, अधिकतर युवा जो है वो बहिर्मुखी है और तकनीक और विचार से बहुत समृद्ध है। अभी हर आदमी अपनी चीजें दिखाना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है।
जी,
तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात जो ओम जी ने और कुणाल जी ने की है, इस तरह के तमाम माध्यम हैं हमारे पास जिससे हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। उसमें भी स्पेशली यदि हम जब थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर क्या है, सबको वैसे भी पता है कि ये दृश्य और श्रव्य है। आदमी जब मंच में नाटक कर रहा होता है तो वो अपने संवाद के माध्यम से लेखक के विचार जो है वो प्रस्तुत करता है, तो वो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, तो ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। तो ये जो तीसरी जो चीज है जिसे हम प्रेक्षक कहते हैं, दर्शक, तो वो बिल्कुल लाइव जुड़ पाता है और इसका जो फीडबैक का सिस्टम है तुरंत उसका फीडबैक आता है। मुझे लगता है अभी हर व्यक्ति जो है कुछ भी चीजों का जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो तुरंत पाना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरह से हम बात कर लें। तो उसी तरह से अपने विचारों का जो फीडबैक है वो युवा तुरंत जानना चाहता है, ये भी एक वजह है जिससे लगातार जो है युवा जुड़ रहे हैं। वैसे भी थिएटर जो है ये युवाओं का ही है, जब जुड़ते हैं वो तो ठीक है, जुड़ने के साथ वो किसी भी फील्ड में जाए आप धीरे धीरे समझ विकसित होती है। जब मैं थिएटर से जुड़ा था तो बस मुझे बस यही पता था कि रंगमंच जो है वो भी एक मीडियम है कुछ कहने का। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज का युवा जो है वो रंगमंच के प्रति आकर्षित होता है। दूसरी बात ये भी है कि यह बहुत समय से, जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1956 में हुई
जी,
उससे पहले से ही जब से थिएटर भारत में शुरू हुआ है तो थोड़े समय के बाद से इसको लोगों ने अपने कैरियर के रूप में अपना पैसा बनाने के लिए इसको चुनना शुरू किया। जैसे अभी कुणाल जी ये कह रहे थे कि भोपाल में जो इंटरव्यू हुआ था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चयन प्रक्रिया के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें तो बीएससी किए हुए लोग आ रहे हैं, एमबीए किए हुए लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे हैं। क्या है, बच्चे प्रेशर में काम करते हैं, जैसे माता पिता ने कह दिया हाँ भैया तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तो ये चीजें पहले से चली आ रही हैं। तो आज का युवा क्या करता है, ठीक है कि हाँ भैया आप कह रहे हैं तो हम बीएससी कर लेते हैं, आप कह रहे हो तो हम इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर लेते हैं, लेकिन फिर इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद जब उसको समझ में नहीं आता है कि बाबा हमको तो इंजीनियर बनना नहीं था, तब वो जाकर के वो एक अलग मीडियम चुनता है कि हाँ मैं जो चाहता हूँ मैं वो करूँ, तो फिर इसको एक अच्छा मीडियम मिल पाता है थिएटर का जो मीडियम है। पहले तो लोग मतलब अभिनय को एक क्राफ्ट के रूप में लेते नहीं थे ना, अभी जब से ये इंस्टीट्यूट खुले हैं भारत में।
आनंद, एक एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने इंस्टीट्यूट की बात की और इससे पहले आपने बोला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जब शुरू हुआ उसके बाद से लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर सीरियस हो गए, लोगों को ये समझ में आने लग गया कि हाँ इसको पेशे के रूप में भी हम अपना सकते, तो अभी क्या संभावनाएं दिखती हैं? ओम जी, आप क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे?
मैं ये एक बात एक कहना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ही ले सकते हैं कि जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होकर आए उसके बाद भी उन्होंने 20 साल स्ट्रगल किया। अब क्या है कि अगर आप प्रेम है वाकई उसके थिएटर के प्रति सीरियस है और अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं काम मिलेगा, और ये हो रहा है। आज चीजें बदल चुकी हैं, उस दौरान की तकनीक अलग थी, अभी की तकनीक अलग है, अभी आप तो वे ऑफ एक्सप्रेशन और जो रीच है वो बढ़ चुका है। अगर आप अभी पहले के टाइम में होता था कि आप सीधे ऑडिशन देने जा रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन ऑडिशन दे देते हैं, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है आप क्रिएटिविटी है तो यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दे रहा है, तो आप अपने आप को बहुत जगह एट द सेम टाइम में बहुत लोगों को दिखा सकते हैं, एक्सपोजर बढ़ चुका है। तो ये स्ट्रगल का टाइम होता है उसको जाहिर तौर पर है कि वो थोड़ा कम कर देता है। इंडस्ट्री में अब क्या है, लोगों को काम मिलने लगा है, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ अगर हम ट्रेन होकर जाएंगे, अगर हमको फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है तो हमें कैसे काम मिलेगा, तो एक ही रास्ता है कि हम इसमें सीख कर जाए, और सीख कर जाने के बाद भी क्या हमको मिलेगा काम, तो हाँ मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम मिल रहा है, और जैसे जैसे आप अच्छा काम करते जाते हैं उसके अनुसार आपको काम में आप धीरे धीरे प्रोग्रेस भी करते जाते हैं। तो ये चीजें जो हो रही है ये प्रोत्साहित काफी कर रही है लोगों को कि वो एक सही तरीके से जाए इस फील्ड में, ट्रेन होकर जाए। रंगमंच भी बहुत ज्यादा लोगों के रीच में आ रहा है, क्योंकि ये पहले बहुत कम जगह हुआ करता, अब छोटे छोटे जगह पर भी ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। कमर्शियलाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी चीजें काम की जा रही है। तो जो लोग कोर हार्डकोर थिएटर करना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी कि वो भी इसमें आकर अपना कैरियर बना रहे हैं। खुद देखिए कि अब छोटे छोटे रीजनल फिल्में ज्यादा बढ़ गई हैं, छोटे छोटे वेब सीरीज बन रहे हैं, वो कि जरूरी नहीं कि वो मुंबई में ही बने, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बन रही है, वो हर जगह बन रही है, दिल्ली में बन रही है, बनारस में बन रही है, बिहार में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है। तो वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उन्हें भी मौका मिल रहा है कि हाँ वो इन सब चीजों से यूटिलाइज करके कमा सके, अपने पैशन को और ज्यादा फॉलो कर सके। तो ये प्रोत्साहित तो करता ही है, जाना है तो मुंबई जाएंगे तभी काम मिलेगा, तो अब ऐसा नहीं है।
अपनी जगह में रहकर भी आप बेहतर काम कर सकते हैं। करियर पे बात चल रही है, थिएटर या रंगमंच किस तरह से हम आगे अपने जीवन यापन के लिए भी इसमें ही आगे बढ़ सकते हैं। पहले बड़ा कठिन होता था,
बहुत ज्यादा।
हम रंगमंच में रहते हुए घर कैसे चलाएं, क्योंकि रंगमंच ऐसी चीज है, नशा ही बोलना चाहिए क्यों आनंद जी? बहुत पॉजिटिव नशा है। बातें ज्यादातर फिल्मों की तरफ ही जा रही है बार बार कि फिल्म में करियर है या इस तरह से, हम वहाँ ज्यादा फोकस हो जा रहे हैं। आप बताएं कि रंगमंच करते हुए सिर्फ फिल्म में ही करियर बना पाएंगे या हमारे लिए और भी रास्ते हैं? जी आनंद जी बताइए कि
तमाम रास्ते हैं, केवल अभिनय ही तो रंगमंच नहीं है ना। नाटक करने को हम एक नाटक का प्रदर्शन करते हैं उसको हम नाटक कहते हैं, जो लिखित स्क्रिप्ट के रूप में होता है। रंगमंच हम टोटलिटी में करते हैं। रंगमंच करने के लिए हमको तो बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है।
बहुत सारे लोगों के लिए रंगमंच मतलब एक्टिंग पे ही फोकस हो जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत सारी उसमें शाखाएं
हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक आइडिया चाहिए, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, कहानी हो, कविता हो, तो एक आइडिया होता है। अब उस पर काम करने के लिए एक्टर चाहिए, तो कहानी हो गई, फिर अभिनेता हो गया, फिर तीसरा सीधे तौर पर दर्शक चाहिए कि हमारे पास अभिनेता है करने के लिए, एक कहानी है जिस पे काम किया जाएगा, और काम हो जाएगा जब तो उसका प्रदर्शन जो है होगा, फिर दर्शक तीसरा है वो उसको देखेगा, उसको एग्जामिन करेगा कि हाँ आपने क्या काम किया, कैसा काम किया। अब इसी के बीच में धीरे धीरे टेक्निकल चीजें धीरे धीरे घुसती जाती है
जी।
तो आप बहुत सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। आप सेट डिजाइन पे जा सकते हैं, ये एक अलग काम है। आप मेकअप पे जा सकते हैं, ये एक अलग स्ट्रीम है। आप कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पे जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज डिजाइनिंग पे जा सकते हैं। इसके अलावा लाइट्स की डिजाइनिंग होती है, वो भी उसकी भी पढ़ाई होती है थिएटर में, तो आप उस लाइट डिजाइनिंग की स्ट्रीम में जा सकते हैं। अभी देखिए ना, लाइट डिजाइनर जैसे लोग नहीं है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारे पास नहीं है।
हाँ, हमारा जो रंगमंच है वो तो जुगाड़ में चलता है, पर मुझे ये इसमें पॉजिटिव भी लगती है एक चीज कि हमको करने के मौके मिलते हैं, फिर और वो मौके मिलते हैं तो हम करते करते बहुत सारी चीजें सीखते भी। कई बार उसी में हम फिर वो लाइट करना भी सीखते हैं, कॉस्ट्यूम भी सीखते हैं, मेकअप भी सीखते हैं। हमारी मास्टरी किसी में नहीं होती, पर हमारा दायरा और बढ़ जाता है, ऐसा लगता है मुझे आनंद।
हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। और वो छोटी छोटी चीजें करने से आदमी की क्रिएटिविटी जो है ना, उसी से बढ़ती है। छोटी छोटी चीजों से आदमी बड़ी बड़ी चीजों की तरफ बढ़ता है।
जी जी जी,
इसी तरह से चीजें निकलती है ना। अब जैसे छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एक उदाहरण है, रचना के नाम से संस्था चलती थी रायपुर में, उसमें अशोक मिश्रा जी, जयंत देशमुख जी और तमाम लोग जुड़े हुए थे। इसी थिएटर से निकले हुए जयंत देशमुख सर जो है पहले भारत भवन जाते हैं और भारत भवन के रिपेक्ट्री में काम करते हैं, और उसके बाद फिर धीरे से मुंबई का रुख करते हैं। और आज आप देखिए वो कितने बड़े एक
आज वो स्थापित
डायरेक्टर और एक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं। जयंत देशमुख मुंबई से थिएटर के लिए वो रायपुर आते हैं, भोपाल आते हैं, कहीं भी जाते हैं। उनका नाटक नट सम्राट है, बहुत चर्चित नाटक है। रायपुर में उन्होंने मृत्युंजय किया, उसके भी 13-14 शोज हुए। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं।
आपकी बात से मुझे आनंद जी एक चीज ध्यान आ रही है कि आपने जैसे बोला ना कि जयंत जी जो पहले से थिएटर करते रहे हैं वो भी वापस आते हैं और थिएटर करते हैं, तो बहुत सारे स्टार्स से मैंने सुना है या फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज वगैरह में मैंने पढ़ा है, सुना है, वो फिल्म तो लगातार करते हैं, बहुत सारी फिल्में करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नाटक करने का एक प्रेम है या जुनून है या सुकून है वो पाने के लिए वापस से फिर वो थिएटर करते हैं, या अपने बहुत सारे कमर्शियल साइट्स को छोड़ के फिर वो ब्रेक लेकर फिर अपने लिए नाटक करते हैं। ये नाटक की अपना एक पावर तो है कि ये अपनी तरफ आकर्षित करता ही है लोगों को। और इसमें जैसे हमारी जो बात हो रही थी कि नाटक से और क्या चीजें फिल्मों के अलावा भी हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आजकल तो बहुत सारे माध्यम है थिएटर करते हुए, क्योंकि हमको बहुत सारी डिजाइन समझ में आती है, पैटर्न समझ में आते हैं, हमको ब्लॉकिंग समझ में आती है, तो लोग इसमें फोटोग्राफी की तरफ भी बहुत सारे लोग इसमें या सिनेमेटोग्राफी की तरफ भी चले जाते हैं।
जी हाँ, ये जिसके अब मेकअप आर्टिस्ट हैं तो वो लोग भी अब फैशन के लिए या फिर मॉडल्स के लिए मेकअप करने लगते हैं। चीजें हम सीखते हैं थिएटर से ही, उसका इस्तेमाल जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो स्क्रिप्ट राइटर है वो एड इंडस्ट्री में भी काम करने लगे हैं या जो कॉपी राइटर का भी काम करने लगते हैं अर्निंग के लिए, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हमें मिलती है थिएटर से ही जो कि हम
बिल्कुल
अर्निंग के लिए लाइवलीहुड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं काफी अच्छे तरीके।
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थिएटर में ना दुनिया की कोई ऐसी विधा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है थिएटर में जरूरत ना पड़ती हो जिसकी, यहाँ से निकल के भी वो दूसरे अलग अलग संस्थानों में अलग अलग करियर्स में जा सकते हैं। जूते सिलने वाले से लेकर पूरा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई इंजीनियर हो, वहां तक के सारे लोगों की जरूरत रंगमंच में या थिएटर में पड़ती है। अब इसके थोड़ा सा हम आगे की बात एक और करेंगे। आनंद जी, आपसे मैं चाहूंगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं या किस तरह से इसको लेते हैं कि ये अभी जो युवा आ रहे हैं रंगमंच के लिए कितने फायदेमंद है, वैसे ही रंगमंच उनके लिए कितने फायदेमंद है, क्या कहेंगे?
देखिए, दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कलाकारों के रंगमंच का
जी
जो कलाकार हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए तो और अच्छा काम चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, तो उनको थिएटर में ही आना पड़ेगा। हर आदमी देखिए इतनी बड़ी फीस लेकर के नहीं सीख सकता, या बहुत सारे इंटरेस्ट के लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है, वो एक सरकारी इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ पाते हैं जहाँ की फीस बहुत कम होती है, 3-4 हजार रुपए की फीस होती है, वो भी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन थिएटर में देखिए एक कलाकार के पास ये जोश और जुनून होता है जो उसको जिंदा रखता है रंगमंच के लिए। हमें इस तरह से रंगमंच के लिए युवा जो है वो बहुत जरूरी है, उनकी जो एनर्जी है, सब जो उनकी शक्ति है वो यूथ के पास है। युवा जिस एनर्जी से काम करता है उस एनर्जी से एक अधिक उम्र का व्यक्ति नहीं कर सकता, हालांकि फिर भी थिएटर के लोग बहुत एज होने के बाद भी बहुत अच्छा काम करते हैं।
कहावत भी है कि कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता।
बिल्कुल, कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता।
बिल्कुल, बस इसी आपकी बातों के साथ में कि तमाम युवा थिएटर करने आते हैं, रंगमंच करने आते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे आइडियाज लेकर आते हैं, एक अलग एक एनर्जी लेकर आते हैं, वो रंगमंच के लिए भी उपयोगी होती है और रंगमंच उनके लिए उपयोगी तो होता ही है क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें वहां से मिलती है। कुणाल, रंगमंच आपको क्या दे रहा है और आप रंगमंच को क्या दे पा रहे हैं, अपनी क्या बात रखना चाहेंगे?
जी सर, बहुत अच्छा लगा ये आनंद सर की बात सुन के और ओम सर की बात सुन के। और दूसरी चीज ये कि जो मैं अभी के थिएटर से ले रहा हूँ वो यही है कि सर आप जब किसी चीज के लिए इतना आप मेहनत करने लगते हो, आप इतना अपना शौक बनाते हो, फिर उसको अपना प्रोफेशन बनाते हो, आप उसके लिए जीना शुरू कर देते हो, तो अलग से सर एक ये है कि वो पैदा होने लगता है कि आपको उसी के लिए करना है। सारी चीजें थिएटर के साथ मेरा वैसा ही है। बेसिकली थिएटर डिसिप्लिन है, कम्युनिकेशन है, जो कि बहुत अच्छा बनाता है किसी भी इंसान के लिए, वो किसी भी फील्ड का आदमी हो सकता है। मेरे लिए पर्सनली वो चीज है कि बाहर आम लोगों के बीच में भी आज जो पहचान मेरी बन पा रही है वो सिर्फ थिएटर की वजह से है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आनंद सर जैसे लोग हैं, ओम सर जैसे लोग हैं, इतने भी बड़े बड़े निर्देशकों के नाम पढ़ रहा हूँ लगातार, तो उनसे सबसे ही प्रेरणा मिलती है कि इस फील्ड में काम करने के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ दिया है, अब हम लोग की बारी है देने की, तो बस सर जी लगा के काम करना है बस उसके बाद क्या।
थैंक यू कुणाल। ओम जो झारखंड और बिहार से हैं, तो मैं ओम से जानना चाहूंगा कि उनकी कोई बात वो इस पूरे मुद्दे पे, इस पूरे टॉपिक पे वो क्या कहना चाहेंगे।
कहूंगा कि अगर आप एक्टिंग या इस विधा में जाना चाह रहे हैं तो ही थिएटर करें, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये थॉट है कि आदमी को जीवन में कुछ साल तो थिएटर करना चाहिए, क्योंकि इस थिएटर सिर्फ आपको थिएटर की बारीकियों से नहीं बल्कि एक तमीज सिखाता है। तमीज सिखाता है कि जीवन में कैसे रहें, पर्सपेक्टिव सिखाता है, सोच का दायरा खोलता है, जिससे कि आप जीवन में मतलब हर एक मोड़ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने जब थिएटर स्टार्ट किया था, मैं कुछ और, अभी के दौरान मैं कुछ और हूँ। हाँ, मैंने बारीकियां सीखी थिएटर की, लेकिन उसके अलावा मुझे लोगों से कैसे मिलना है, क्या बात करनी है, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तमाम चीजें बदली है। मेरा स्टाइल, बोलने का लक्षण, अपीयरेंस, ये थिएटर की वजह से बदला है। तो अगर मैं इसे कंटिन्यू थिएटर के फील्ड में कंटिन्यू ना भी रहूं मैं खुद, तो भी ये चीजें मेरे साथ आजीवन रहेंगी। तो मेरा तो मानना है कि चूंकि आर्ट फॉर्म रहा है तो हर एक युवा को थिएटर जीवन में कम से कम 1 या 2 साल तो बिल्कुल करना ही चाहिए। थिएटर से उसे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जो कि वो अपने पर्सनल लाइफ में यूज कर सकता है, तो ये मेरा मानना है।
जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, थिएटर इंसान को जीना सिखाता है।
जी, कहे तो एक बार में तमीज सिखा देता है कि आपको कैसे इंसान बनना है, अगर एक लाइन में कहा जाए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ना एक बार थिएटर करना जरूरी है। तो आनंद जी, आप हम सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, आपने काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है, उनके सानिध्य में आप रहे हैं, बहुत अनुभव है आपका, आपने नाट्य कला में ही PhD की हुई है, आपका अनुभव भी है और साथ में आपकी पढ़ाई भी है, तो मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों को आप किस तरह से सम अप करेंगे।
अब देखिए, अनुभव, पढ़ाई लिखाई वो सब कुछ सबको पकड़ करके एक साथ किनारे रख लीजिए, कुछ भी नया काम करने के लिए अनुभव जो है वो शून्य हो जाता है और शून्य से उसकी शुरुआत होती है। अगर मैं नया नाटक कभी स्टार्ट करूं तो वो बिल्कुल शून्य से उसकी शुरुआत होगी और वो कहाँ पहुंचेगा वो तो प्रोसेस से पता चलता है। और आपने कहा कि रंगमंच ने आपको क्या दिया है और आपने रंगमंच को क्या दिया है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रंगमंच ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, अभी जो कुछ भी हूँ वो रंगमंच की वजह से हूँ, और रंगमंच को मैंने क्या दिया है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो ऑडियंस बताएगी, ये मेरे हिस्से का नहीं है।
ऑडियंस ने भी बताया सर, मैंने आपका वो ड्रामा देखा है विंसेंट फ्लैशबैक, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पांस था तो बिल्कुल मैं खुद उसका गवाह रहा हूँ। मैंने भी वहाँ बैठकर रायपुर के मुक्ताकाश मंच में जब वो प्रदर्शन हो रहा था तो मैं भी वहाँ पर था, उस तो मैं बता सकता हूँ कि दर्शकों का जो रिस्पांस था तो बिल्कुल आपने बहुत कुछ दिया है रंगमंच को।
हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो ऑडियंस है और कुछ नहीं है। दूसरी बात, जैसे सुनने की बात की मैंने, तो अनुभव तो ठीक है, होता है, लेकिन नई चीज की किसी चीज की शुरुआत करते हैं हम तो वो फिर सुनने से ही उसकी शुरुआत होती है। तो बस यही कहना चाहूंगा, खूब पढ़ाई करें, खूब रिसर्च करें, पीछे की चीजें जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे क्या होने वाला है ये चीजें तय नहीं कर पाएंगे। तो अपनी दृष्टि बड़ी रखें, पढ़ाई करते रहें, खूब पढ़ें और खूब काम करें, काम की भरमार है। छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक रंगकर्मी होता है तो बहुत स्पेस जो है वो खाली है, शून्य है, और ये शून्यता बहुत जगह है। तो खूब पढ़ाई करें, खूब काम करें, खूब थिएटर करें, लोग नाटक बनाएं, लिखें, डायरेक्ट करें, एक्टिंग करें, सब कुछ करें, बहुत मजेदार है ये, बस और क्या।
आप तीनों से बातचीत बहुत अच्छी रही, बस चलते चलते आपकी बातों के साथ पे इसको खत्म करता हूँ कि ये जो थिएटर है, रंगमंच है, उसकी ताकत हमें पहचान देती है, हमें जीने की तमीज सिखाती है या हमें जीना सिखाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। इसके लिए पढ़ते रहना, रिसर्च करना, खोजते रहना खुद के अंदर और आसपास, नया कोई काम करने जाएं, जैसा कि आनंद जी ने कहा कि एक शून्य के साथ में हम शुरुआत करें, हमारे पास यहाँ पे बहुत जगह है काम करने के लिए, पूरा स्पेस अभी खाली है। एक कोई नया काम जब भी शुरू करें तो शून्य के साथ में शुरू करें, और शून्य से शुरू करेंगे तो हमारे पास उसका दायरा बढ़ जाएगा, काम करने के लिए बहुत आगे असीम संभावनाएं रहेंगी।
इस बात के साथ हम आज की टॉकचीत को विराम देते हैं, अगली टॉकचीत तक हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं अरुण भांगे अरपा रेडियो की तरफ से आप सभी रंगकर्मियों और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।